एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत असरदार किताब की। नाम है द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल। आपने सुना ही होगा इसके बारे में।
हाँ हाँ बिल्कुल सुना है, विलियम स्ट्रंक जूनियर और ई.बी. वाइट। कमाल की किताब है। हिंदी में अगर कहें तो शायद शैली के तत्व या ऐसा कुछ कह सकते हैं। पतली सी है पर दशकों से राइटर्स के लिए गाइड जैसी रही है।
सही बात है। और सोचिए आज के जमाने में ये कितनी जरूरी हो गई है। हम सब, मतलब हर कोई, ईमेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ऑफिस की रिपोर्ट्स, हर जगह लिख रहे हैं।
बिल्कुल। और ऐसे में अपनी बात साफ साफ कहना, कम शब्दों में कहना और असरदार तरीके से कहना, ये तो बहुत ही अहम हो गया है।
हाँ, वरना गलतफहमी हो सकती है या बात पहुंची ही ना।
सही। तो ये किताब सिर्फ क्या कहते हैं, बड़े लेखकों या प्रोफेसर्स के लिए नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो हर उस इंसान के लिए है जो चाहता है कि भाई मेरी लिखी बात लोग समझें, ध्यान दें।
हाँ,
ये सिखाती है कि कैसे वो फालतू शब्दों का जो जंगल होता है ना, उससे निकलकर सीधे मुद्दे पर कैसे आए। स्पष्टता, संक्षिप्तता और सटीकता, बस यही मूल मंत्र है इसका।
तो ये कमाल किया किसने। जरा उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने ये किताब हमें दी।
हाँ करते हैं। पहले हैं विलियम स्ट्रंक जूनियर। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये गाइड, सोचिए 1918 में,
अरे वाह।
हाँ, अपने छात्रों के लिए एक छोटी सी पुस्तिका के तौर पर बनाई थी।
अच्छा।
उनका मानना था कि भाषा के कुछ नियम होते हैं और ये नियम आपकी क्रिएटिविटी को रोकते नहीं हैं बल्कि उसे सही दिशा देते हैं। तो उन्होंने किताब की नींव रखी, ढांचा दिया।
और फिर आए ई.बी. वाइट। वो स्ट्रंक के छात्र रह चुके थे
हाँ ये दिलचस्प बात है।
और बाद में वाइट खुद अमेरिका के बहुत मशहूर लेखक बने। बच्चों के लिए शॉर्लेट्स वेब जैसी क्लासिक लिखी, द न्यूयॉर्कर मैगजीन के लिए लिखते थे।
जी
तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रंक के जो थोड़े अकादमिक, शायद कुछ लोगों को रूखे लगे, उन नियमों को लिया और उन्हें आम लोगों के लिए, मतलब रोजमर्रा की भाषा में समझने लायक सलाह में बदल दिया। एक प्रैक्टिकल लेखक का तजुर्बा उसमें डाल दिया।
और यही यही जुगलबंदी है जो इस किताब को खास बनाती है। एक तरफ प्रोफेसर की वो बारीकी, नियमों की समझ,
हाँ
दूसरी तरफ एक मंजे हुए लेखक की प्रैक्टिकल सलाह।
हाँ
स्ट्रंक ने बताया क्या करना है, नियम क्या हैं, और वाइट ने समझाया कि क्यों और कैसे करना है, मतलब स्टाइल, अंदाज।
क्या बढ़िया मेल है, थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ।
बिल्कुल, यही इसे इतना टिकाऊ और उपयोगी बनाता है।
ठीक है, लेखकों की बात हो गई, अब आते हैं जरा किताब पर। इसका निचोड़ क्या है, क्या कहना चाहती है किताब असल में?
देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये अंग्रेजी गद्य लिखने में स्पष्टता, सटीकता और हाँ संक्षिप्तता पाने का एक सीधा सरल रास्ता बताती है। ये कोई भारी भरकम ग्रामर की किताब नहीं है बल्कि एक हैंडबुक है जो सबसे जरूरी उसूलों पर फोकस करती है।
और इसका सबसे बड़ा आइडिया शायद ये है कि अच्छा लिखने का मतलब शब्द जोड़ना नहीं है बल्कि हटाना है ना?
क्या बात कही, बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे कोई मूर्तिकार होता है ना, वो पत्थर से फालतू हिस्सा हटाता है,
हाँ,
तब जाकर मूर्ति उभरती है। वैसे ही लेखक को फालतू शब्द हटाने चाहिए ताकि बात निखर कर आए।
ये उपमा अच्छी है।
तो ये किताब उसी उलझन को सुलझाती है जो हम सब महसूस करते हैं कभी कभी, वो गोलमोल बातें करना।
हाँ, या बहुत भारी शब्द इस्तेमाल करना।
हाँ वही भारी भरकम शब्द। ये किताब कहती है कि भाई प्रभावशाली दिखने के लिए मुश्किल भाषा की जरूरत नहीं है।
अच्छा,
असली दम तो सादगी में है, सीधेपन में है, सिस्टमैटिक तरीका है। और जो बात इसे दूसरी राइटिंग गाइड से अलग करती है वो है इसका हद से ज्यादा प्रैक्टिकल होना।
मतलब
हर नियम के साथ आपको ठोस उदाहरण मिलेंगे। किताबी बातें कम, काम की बातें ज्यादा, और इसीलिए ये हर किसी के लिए फायदेमंद है। स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, ब्लॉगर हो, कोई भी जो लिखता है।
चलिए अब जरा किताब के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि इसके अलग अलग हिस्सों में क्या खास बातें हैं।
हाँ जरूर। किताब मोटे तौर पर पांच हिस्सों में है। पहला हिस्सा है प्रयोग के बुनियादी नियम, एलिमेंट्री रूल्स ऑफ यूजेज।
अच्छा, इसमें क्या है?
इसमें फोकस है बुनियादी ग्रामर और पंक्चुएशन की शुद्धता पर, जो आम गलतियां हम अक्सर कर जाते हैं उन्हें ठीक करने पर।
जैसे कोई उदाहरण देंगे?
हाँ, जैसे किसी नाम के साथ काकी के लिए अपोस्ट्रोफी का सही इस्तेमाल, चार्ल्स का फ्रेंड कैसे लिखें, या फिर किसी लिस्ट में कॉमा कहाँ लगाना है।
हाँ, वो सीरीज वाला कॉमा।
बिल्कुल, जैसे लाल, सफेद और नीला, वो आखिरी और से पहले वाला कॉमा जिसे ऑक्सफर्ड कॉमा भी कहते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. या फिर सब्जेक्ट और वर्ब का सही मेल, मतलब कर्ता और क्रिया का. लड़के खेलते हैं ना कि लड़के खेलता है.
समझ गए. तो ये एकदम बेसिक चीजें हैं लिखने की नींव.
बिल्कुल, बुनियाद पक्की करना. साफ लिखने की शुरुआत सही लिखने से होती है.
ठीक है, बुनियाद पक्की हो गई, अब आगे दूसरा हिस्सा.
दूसरा हिस्सा है रचना के बुनियादी सिद्धांत, एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पोजिशन. और सच कहूं तो यही इस किताब का, कह सकते हैं, दिल है.
अच्छा, क्यों?
क्योंकि यहां बात सिर्फ गलतियां सुधारने की नहीं है, यहां बात है अपने लेखन को पावरफुल बनाने की, सीधा और पढ़ने में दिलचस्प बनाने की.
हाँ, और यही वो मशहूर नियम आते हैं ना जिनके लिए ये किताब जानी जाती है.
बिल्कुल. सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करें, सक्रिय वाच्य.
एक्टिव वॉइस.
हाँ, मतलब कुत्ते ने आदमी को काटा, एक्टिव कहना ज्यादा सीधा, ज्यादा दमदार है, बजाय ये कहने के कि आदमी को कुत्ते द्वारा काटा गया.
हाँ, वो पैसिव वाला थोड़ा घुमावदार लगता है.
हाँ, और अक्सर कमजोर भी लगता है, थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक, सरकारी भाषा जैसा. एक्टिव वॉइस में एक ऊर्जा होती है.
समझ गए. और दूसरा मशहूर नियम?
वो तो मंत्र जैसा है, फालतू शब्द हटाएं.
ओमिट नीडलेस वर्ड्स.
हाँ बिल्कुल, दमदार लेखन संक्षिप्त होता है. हर शब्द का कोई ना कोई काम होना चाहिए वाक्य में. अगर किसी शब्द या फ्रेज को हटाने से मतलब नहीं बदल रहा तो उसे हटा दो.
जैसे?
जैसे कई बार हम लिखते हैं द क्वेश्चन एज टू वेदर, इसे सीधे वेदर लिख सकते हैं.
हाँ, काफी छोटा हो गया.
बिल्कुल, कम शब्द ज्यादा असर, संक्षिप्तता ही शक्ति है.
ठीक है, और कोई नियम इस सेक्शन में?
हाँ, एक और है. अपनी बात को सकारात्मक तरीके से कहें.
अच्छा.
जहां तक मुमकिन हो नहीं या मत वाले वाक्यों से बचें.
अच्छा, क्यों?
क्योंकि पॉजिटिव वाक्य ज्यादा डायरेक्ट और ज्यादा मजबूत लगते हैं. जैसे वो अक्सर देर से आता था, कहना ज्यादा प्रभावी है, बजाय ये कहने के कि वो ज्यादातर समय पर नहीं आता था.
बात तो सही है.
और एक और अहम बात, निश्चित विशिष्ट ठोस भाषा का इस्तेमाल करें, मतलब गोलमोल बातें नहीं.
हाँ, वो बताओ मत दिखाओ वाला सिद्धांत.
बिल्कुल वही.
हाँ,
एब्स्ट्रैक्ट बातें करने के बजाय ऐसी चीजें लिखें जिन्हें पाठक महसूस कर सकें, देख सकें, सुन सकें. जैसे सिर्फ ये ना कहें कि वो नजारा सुंदर था, बताएं कि पहाड़ों पर शाम की धूप सुनहरी थी और हवा में चीड़ की खुशबू थी.
वाह, इससे तो तस्वीर बन जाती है दिमाग में.
बिल्कुल. तो ये था दूसरा हिस्सा. अब आते हैं तीसरे पर, रूप संबंधी कुछ मामले, अ फ्यू मैटर्स ऑफ फॉर्म. ये थोड़ा प्रैक्टिकल साइड है.
इसमें क्या है?
इसमें है कि अपनी लिखी हुई चीज को पेश कैसे करें, मैन्युस्क्रिप्ट की तैयारी, जैसे हेडिंग कैसे देनी है, नंबर कैसे लिखने हैं, कोटेशन मार्क्स कैसे लगाने हैं.
अच्छा, फॉर्मेटिंग वगैरह.
हाँ, एक तरह से. ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये दिखाती हैं कि आप अपने काम को सीरियसली लेते हैं और पढ़ने वाले का सम्मान करते हैं.
प्रोफेशनल लगता है.
सही बात है.
चौथा हिस्सा?
चौथा है आमतौर पर गलत इस्तेमाल होने वाले शब्द और मुहावरे,
वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस कॉमनली मिसयूज्ड.
ये एक तरह की मिनी डिक्शनरी है.
अच्छा, इसमें क्या शब्द हैं?
इसमें उन शब्दों के बीच का फर्क बताया गया है जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अंग्रेजी में अफेक्ट और इफेक्ट में क्या फर्क है, या लेस और फ्यूअर कब इस्तेमाल करें, एग्रेवेट और इरिटेट में क्या अंतर है.
हाँ, ये गलतियां तो बहुत आम है.
बिल्कुल, और सही शब्द चुनना भी तो स्पष्टता के लिए बहुत जरूरी है.
और फिर आता है पांचवा और आखिरी हिस्सा जो ईबी वाइट ने जोड़ा था.
हाँ बिल्कुल, वो है शैली के प्रति एक नजरिया, एन अप्रोच टू स्टाइल. ये हिस्सा नियमों से थोड़ा आगे जाता है. ये लिखने की कला और उसके पीछे की फिलॉसफी पर बात करता है.
इसमें वाइट क्या कहते हैं?
वाइट कहते हैं कि आपकी स्टाइल, आपका लिखने का अंदाज, वो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है. वो दिखाता है कि आप कौन हैं, आपका नजरिया क्या है, आप कितने ईमानदार हैं अपने विषय के प्रति. वो जोर देते हैं कि लिखने का मकसद अपनी होशियारी दिखाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना होना चाहिए.
हाँ, संवाद करना.
बिल्कुल, सादगी और स्पष्टता को अपनाएं. वाइट ये भी याद दिलाते हैं कि अच्छा लेखन एक झटके में नहीं होता.
हाँ,
उसे बार बार सुधारना पड़ता है. रिविजन बहुत जरूरी है.
हाँ, एडिटिंग.
जी, और वो कहते हैं कि अपनी लिखी चीज को जोर से पढ़कर देखो, उसकी लय महसूस करो, और सबसे बढ़कर ईमानदार रहो, अपनी आवाज में लिखो.
तो मतलब नियम तो है, पर वो अंत नहीं है, वो साधन है.
एकदम सही, साधन है अपनी बात सच्चाई से, खूबसूरती से और असरदार तरीके से कहने के लिए.
तो ये पांच हिस्से मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं.
बिल्कुल.
तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इस किताब के सबसे मुख्य संदेश क्या उभर कर आते हैं? व्हाट आर द की टेकअवेज?
मेरे ख्याल से पहली और शायद सबसे गूंजने वाली बात है संक्षिप्तता से स्पष्टता, क्लैरिटी थ्रू ब्रेविटी।
वे फालतू शब्द हटाओ वाला फंडा।
हाँ, हर शब्द का वजन होना चाहिए, उसे कुछ काम करना चाहिए। जैसे घर में फालतू सामान अव्यवस्था फैलाता है,
हाँ बिल्कुल,
वैसे ही लेखन में फालतू शब्द अर्थ को धुंधला करते हैं। तो संक्षिप्तता मतलब कुशलता और सटीकता।
दूसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वो है एक्टिव वॉइस की ताकत।
हाँ, वो भी बहुत अहम है।
उससे लेखन में जान आ जाती है, लगता है कि कोई कुछ कर रहा है, एक्शन है। पैसिव वॉइस अक्सर चीजों को थोड़ा मुर्दा सा बना देता है।
सही कहा। तीसरा, सटीकता और ठोसपन, मतलब हवा में तीर नहीं चलाना, नक्कार डिटेल्स देना, वैसी भाषा इस्तेमाल करना जिससे पढ़ने वाली की इंद्रियां जाग जाएं, वो महसूस कर सके।
हाँ, तस्वीर बन जाए।
चौथा, बनावटीपन पर सादगी की जीत, दिखावटी मुश्किल भाषा से बचना।
हाँ, ये बहुत होता है, लोग सोचते हैं मुश्किल शब्द इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा ज्ञानी लगेंगे।
बिल्कुल, जबकि व्हाइट और स्ट्रंक कहते हैं कि असली सुंदरता और असर सादगी में है। पाठक पर ध्यान दो, अपनी होशियारी पर नहीं।
पांचवा,
कि स्टाइल आपकी अपनी पहचान है, ये कोई ऊपर से उड़ी हुई चीज नहीं है। व्हाइट की बात कि ये आपके स्वभाव, आपके ज्ञान, आपकी ईमानदारी से निकलती है।
हाँ, ऑथेंटिसिटी।
बिल्कुल, ऑथेंटिक आवाज, नकल नहीं।
छठा मुद्दा,
कि लिखना मेहनत का काम है, कोई जादू की छड़ी नहीं। ये किताब इस सोच को तोड़ती है कि अच्छा लिखन बस प्रेरणा आने पर हो जाता है।
नहीं, इसके लिए अनुशासन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए।
हाँ, और बार बार सुधारना, रिविजन, ये क्राफ्ट है जिसे तराशना पड़ता है।
और आखिरी बात,
इन सब के पीछे जो मूल भावना है, पढ़ने वाले का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर द रीडर। आप किसी और के लिए लिख रहे हैं तो आपका फर्ज है कि उसका रास्ता आसान बनाए।
सही बात है।
साफ और सीधे लिखकर हम असल में पढ़ने वाले के समय और उसकी समझ का आदर कर रहे होते हैं।
वाह, ये तो सिर्फ लिखने के नियम नहीं है, ये तो कम्युनिकेशन के और शायद जिंदगी के भी सबक हैं।
हैं भी, ये सिद्धांत वाकई बहुत गहरे हैं।
इस किताब में कुछ लाइनें तो ऐसे हैं जो जैसे मंत्र बन गई हैं। उन पर थोड़ी और बात करें, जो सबसे यादगार कोट्स हैं।
हाँ, क्यों नहीं। सबसे मशहूर तो बार बार आ रहा है, फालतू शब्द हटाएं।
Omit needless words।
हाँ, इसका सीधा मतलब है हर शब्द को कसौटी पर कसो। क्या ये जरूरी है? क्या इसके बिना बात कही जा सकती है? ये सिर्फ छोटा लिखना नहीं है, ये असरदार लिखना है।
एक तरह की एडिटिंग की आदत डालना।
पता चलता है कि कौन करता है, कौन काम कर रहा है।
ठीक है।
तीसरा, व्हाइट का सुझाव, खुद को पृष्ठभूमि में रखें।
प्लेस योर सेल्फ इन द बैकग्राउंड।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब लिखने वाले को हीरो नहीं बनना है, हीरो विषय है, ध्यान विषय पर रहना चाहिए, लेखक की अपनी ब्रिलियंस पर नहीं। अच्छी लिखाई वो है जिसमें पढ़ने वाला लेखक को भूल जाए और विषय में डूब जाए।
वाह, ये गहरी बात है, विनम्रता।
हाँ।
चौथा, दमदार लेखन संक्षिप्त होता है, विग्रस राइटिंग इज कंसाइज।
ये फिर से उसी बात पर जोर है।
हाँ, संक्षिप्तता इक्वल्स टू शक्ति।
बिल्कुल, शब्दों की भीड़ अक्सर विचार को कमजोर कर देती है। काटना मतलब ताकत बढ़ाना।
और कोई?
एक और जो मुझे बहुत पसंद है, लिखना मेहनत का काम है, एक साफ वाक्य कोई हादसा नहीं होता।
हाँ, ये याद दिलाता है कि कोशिश करनी पड़ती है। जी हाँ, स्पष्टता अपने आप नहीं आती, उसके लिए सचेत प्रयास, ध्यान, विकल्प चुनने पड़ते हैं।
ये बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं, सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं?
अरे, बहुत तरीकों से। सबसे पहले तो सोचिए ऑफिस के काम का, ईमेल, रिपोर्ट्स।
हाँ, वहां तो बहुत लिखना पड़ता है।
कोशिश करें कि ईमेल सीधे मुद्दे पर आए, लंबी भूमिका ना बांधें, एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करें। जैसे, मैंने सेल्स टारगेट पूरे कर लिए हैं, लिखें, ना कि सेल्स टारगेट मेरे द्वारा पूरे कर लिए गए हैं।
हाँ, इससे कितना समय बच सकता है और बात भी साफ पहुंचती है।
बिल्कुल, गलतफहमी कम होती है। और सोशल मीडिया,
हाँ, वहां तो शब्दों की सीमा होती है अक्सर।
बिल्कुल, और लोगों का ध्यान भी बहुत कम होता है, तो आपके ट्वीट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम कैप्शन छोटे, कैची और सीधे होने चाहिए। फालतू शब्द हटाओ का नियम तो सोशल मीडिया के लिए एकदम परफेक्ट है।
स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत काम का होगा, है ना, असाइनमेंट, थीसिस वगैरह लिखते समय।
जाहिर है, मुश्किल आइडियाज को भी सरल और साफ भाषा में समझाना, वो भारी भरकम एकेडमिक लगने वाले शब्दों के जाल से बचना।
हाँ, जो अक्सर इम्प्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं।
बिल्कुल, जबकि साफ लिखी बात ज्यादा इम्प्रेस करती है, परीक्षक भी तो पाठक ही हैं।
और एक दिलचस्प बात आपने कही थी कि जब हम साफ लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारी सोच भी साफ होती है।
हाँ, ये बहुत गहरा कनेक्शन है। जब आप किसी वाक्य को काट छांट कर उसके जरूरी हिस्से तक लाते हैं तो आप खुद से पूछते हैं, मैं असल में कहना क्या चाह रहा हूँ। तो शब्दों को तराशने की प्रक्रिया में आपके विचार भी सुलझते हैं, ज्यादा स्पष्ट होते हैं। ये सिर्फ लिखने का नहीं, सोचने का भी अनुशासन है।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो एक बड़ी सीख निकल कर आई है वो ये कि सादगी कमजोरी नहीं है, ये असल में परिपक्वता की निशानी है। और नियम हमें बांधते नहीं है, बल्कि वो हमें आजाद करते हैं, हमें अपनी बात बेहतर ढंग से कहने की आजादी देते हैं।
बहुत अच्छी बात कही। और मेरे लिए सबसे खास बात ये रही कि स्टाइल वो कोई ऊपर से लगाई गई पॉलिश नहीं है।
हाँ,
वो आपकी ईमानदारी, आपकी समझ, आपके विषय के प्रति जुनून से खुद ब खुद निकलती है। और हाँ, वो पाठक के प्रति सम्मान वाली बात वो हमेशा याद रखनी चाहिए।
बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो इस छोटी सी किताब का बड़ा संदेश यही है, अच्छा लिखना मतलब जोड़ना नहीं घटाना है, स्पष्टता, संक्षिप्तता और ईमानदारी यही कुंजी है।
और चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हम सबके लिए, अगर आज हम अपने किसी भी लिखने में, चाहे वो एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज ही क्यों ना हो, सिर्फ एक नियम मान लीजिए, फालतू शब्द हटाओ को ध्यान से लागू करने की कोशिश करें, तो क्या फर्क पड़ेगा, कैसा महसूस होगा,
जरूर सोचिएगा इस पर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।